करके देखो, जब भजन करते हो जिसका उत्कंठित चित्त है, जिस चीज के लिए उसका चित्त कहाँ रहेगा, उत्कंठित वस्तु में रहेगा। आज जिसको उत्कंठा उस वस्तु के लिए नहीं है, उसका चित्त कहाँ जाएगा, इधर उधर घूमता जाएगा। तो जिनको उत्कंठा है तो चित्त अपने आप एकाग्र होकर के भगवान में चला जाएगा। आज जिसको उत्कंठा में कमी है, अच्छा आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों, देखिए कोई जल्दीबाजी का थोड़े है। भगवान भी कहीं भाग जाएंगे और हम भी आज ही मर जाते हैं। आज करो सो कल का, कल करो सो परसों, क्या खटखट में पड़े हुए हो, समय पड़ा है परसों बहुत दिन समय है, आज नहीं तो कल ना परसों, परसों होता रहेगा। जो तटस्थ हैं उनको कोई उत्कंठा नहीं। आज जिसको उत्कंठा है, आज मर गया कल मर गया तो उत्कंठा ऐसे कब मिलेंगे, कम मिलेंगे, कम मिलेंगे, मिलेंगे जरूर, ये जब भी भाव हो जाएगी कभी उत्कंठा दूर नहीं रहे। आज जिसको उत्कंठा नहीं है वो चुपचाप तटस्थ हो जाएंगे, तटस्थ होने से भगवान कभी नहीं मिल सकेगा। इसलिए उत्कंठा रहनी चाहिए भक्त मात्र, ऐसा नहीं कि उत्कंठा नहीं है तो बस सो गए, कोई यदि जगाए सिर पर रख लिया चादर और सो गए, सो रहा है ना, क्या कर रहा, लिख रहा है। उत्कंठा रहनी चाहिए पूरी रूप से। जो उत्कंठा जिसके अंदर में जितनी अधिक है उसका इष्ट देव उतना जल्दी मिले, और जिसको उत्कंठा ही नहीं है, जिसके अंदर में उत्कंठा है उसके आंखों में आंसू आ गया, और जिसको उत्कंठा नहीं है उसे कभी नहीं मिले। इसलिए भजन में उत्कंठा सबसे पहले, उत्कंठा चाहिए, उत्साह निश्चय हरिया तब तक कर्म प्रवर्तन, उत्साह को सबसे पहले, उत्साह निश्चय हरिया तब तक कर्म प्रवर्तन, संत्यागत सतो वृत्ति सर्वी भक्ति शिक्षित। ये सब को याद रखना भाई, ये सब पढ़ो किंतु उपदेशामृत और मनुष्य शिक्षा को रोज एक बार याद करो, एक बार स्मरण अंतत कर लो, वही हम लोगों का गंतव्य स्थान है। देखो ये मत समझो जी ऐसे ही आ गया और कह दिया तुमको, प्रभु का आदेश, मेरा आदेश ही प्रभु का आदेश है। उन्होंने कह दिया कि मैं अभी जल्दी नहीं लौटूंगा और गोप कुमार इतनी उत्कंठा सह नहीं सकता, इसलिए आप उसे कह दीजिए कि वो हमारी अनुपस्थिति में ही चला जाने, तो हम आ जाएंगे तो हमको देख करके वो नहीं जा सकता है, और बिना गए उसका काम होगा नहीं, इसलिए उसको कह दीजिए जाने के लिए। इसलिए कहीं अभी भक्त पर कृपा करने गए हैं, अभी आने में विलंब हो सकता है। गोप कुमार वाचा सुत्वा तन निकरान हिष्टो मुख मुहुर नारदम नमन तस्य आशीर्वाद आदाय शिक्षा च अनुस्मरण। सुत्वा तन निकरान हो गया सब,
तीन मिनट बाकी है टाइम का।
नारद जी के उपदेशों को सुन करके और उनके शिक्षाओं का स्मरण करके और वो नारद जी का पुनः पुनः प्रणाम किया, नारद जी पुनः पुनः प्रणाम किया और प्रणाम करके उनका आशीर्वाद मांगा। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर के आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया क्या, तुम्हारी अभिलाषा मनोभीष्ट तुम्हारा पूर्ण है, और मनोभीष्ट माने क्या, तुम्हारा इष्ट देव जो है उनका मनोभीष्ट कहने से ये सभी कुछ हो जाए, मनोभीष्ट तुम्हारा ये उन्होंने कहा। शिक्षा का अनुस्मरण, उनके शिक्षाओं का अनुस्मरण किया, शिक्षा क्या दिया था वही सब पीछे जो भी हम लोग वर्णन करते हैं उन्हीं शिक्षाओं का स्मरण, हम लोग भी इन शिक्षाओं को स्मरण करें। ये सब नारद जी की शिक्षा है, सनातन गोस्वामी की शिक्षा है, यही सब शास्त्रों की और गुरु और वैष्णव की शिक्षा है। इनका स्मरण करके हम लोग धीरे 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 भगवान की तरफ में उत्कंठा के साथ में चलें तो भगवान को पास, और नहीं उत्कंठा नहीं रहेगी और इनका अनुशीलन नहीं करेंगे, पाठ में सुना और जाते जाते यहीं से भूल गए और यहाँ से निकले भूल गए, पीछे क्या हुआ कुछ पता नहीं, ऐसे नहीं। सुनो, समझते हुए जाओ, बैठ करके अनुस्मरण करो उसका, उसमें से जो संदेह की बात, संदेह नहीं, मैंने जो नहीं समझ सकते हैं दूसरे से पूछो, उनसे पूछो, शास्त्रों को देखो और सो विचार करते रहो, जब तक कि पूरा ज्ञान ना है तब तो उस चीज को हम अन्यथा सकते हैं। इसलिए हम लोग साधन करता है, जन्म ग्रहण करता है या साधन में कहीं रुक जाता है तो भगवान कृपा करके भक्तों को गुरु के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में, सत्संग के रूप में उसको दे दें। और उसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक कि वैकुंठ में जाने पर भी परम पक्ष से वहाँ पर साधक लज सकता है। जैसे कि इनकी स्थिति है, इच्छा रहने पर भी कोई चीज जरूरी नहीं है कि वो बिगड़ी जाए। उनके इष्ट देव गोपाल हुए, गोपाल देव से मिलना भी चाहते हैं, किंतु जब अपने मंत्र का जप करते हैं तो अपने इष्ट देव को दर्शन की उत्कंठा बढ़ती है। और जिस समय में नारायण को दर्शन करते हैं उस समय में जाना भूल जाते हैं, उनके पिता का जब विचार करते हैं और उनके समक्ष जब पढ़ पढ़ते हैं तो फिर उनका विचार बदल जाता है। किंतु नारायण इस चीज को समझ रहे हैं क्योंकि कृष्ण और नारायण दोनों एक, इसकी रुचि यहाँ पर नहीं है, लगन हुई है। इस प्रकोष्ठ में, मेरे इस प्रकोष्ठ में ये सुखी नहीं रह सकता, और स्वरूप का विचार ही जानते हैं, उसके स्वरूप में क्या है। नारद जी भी उसके स्वरूप को बात जानते हैं, इसलिए अभी तक तो वार्तालाप हुई उसमें विचित्र विचित्र प्रकार के सिद्धांत रूपी रत्न प्रकाशित हुए, तो भाग्यवान लोग उस सिद्धांत रत्न को अपने हृदय रूपी पेटिका में उसको रखता, और नहीं तो नहीं पल्ले पड़ा तो पल्ला नहीं पड़ा। भक्ति राज्य के ही ये सब दिव्य रत्न सब कभी कभी काम पड़ने पर अपनी अभीष्ट सिद्धि में आपातक एक निष्ठा का विरोधी प्रतीत होने पर भी उसे ग्रहण किया जा सकता है। उस पक्ष ऐसा नहीं है, रामचंद्र जी का भजन, नृसिंह भट्ट जी का भजन आपातक विरोधी मालूम पड़ता है कृष्ण का, और कुछ ऐसा मालूम पड़ता है जो एक निष्ठता वहां पर नहीं रही। आपात दृष्टि से सिद्धांत अनुभव रहित लोगों को ऐसा हो सकता है, किंतु नारद जी ने कहा प्राज्ञ व्यक्ति वही है, बुद्धिमान वही है जो अपना काम हासिल कर ले, अपना काम निकाल ले, वो बुद्धिमान है। और मूर्ख वह है जो जेब पर अड़कर अपना काम को चौपट कर देता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने काम को निकाल ले किसी प्रकार से, जीत पर अड़ गए, झगड़ा कर गए और वो तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध नहीं हुआ, तो फिर किस काम की बुद्धिमत्ता हुई? जैसे अभी हम लोगों को भजन करना है, भजन जो करता है कृष्ण, जे जन कृष्ण भजे से बढ़ चतुर, जो कृष्ण का भजन करता है वो बड़ा चतुर होता है। तो अपने इस चीज की अभिष्ट की सिद्धि चाहिए। माता पिता भाई बंधु पति सबसे झगड़ा कर दी और उन्होंने घर से निकाल दी और कहीं रहने की ठौर नहीं और दिन रात उसी की चिंता में रह गए, तो भजन हुआ नहीं। तो थोड़ा सा चलाकी चतुरा करके उनकी नजरों में उनको खुश करने के लिए कुछ ऐसा कर दो जैसे गोपियां करते हैं और अपना काम चतुराई से निकाल दें। जटला टोल दैट और बहुमान बहुमी मां मुझसे राजी
डॉटर
से शिक्षा दे दे। और हरिदास ठाकुर जी चतुराई से कह दिया कि मैं एक कोटि नाम यज्ञ में बैठा हुआ हूं, अब ये पूरा ही होता है। उसे झगड़ा किया, अरे ये चंडाली ये यहां पर आ गई, हमारा ये सर्वस्व हरण करेगी और दुर्वासा का रूप ले लिया, मारा मारी कर दिया। नहीं नहीं नहीं, इस स्थान हम नहीं रहे, ये नहीं था। कितनी चतुराई से ऐसा किया, भजन किया और उसको सुनाया कृष्ण, थोड़ी देर में चित्त पिघल गया उसका, परम वैष्णवी हो गई और स्थान छोड़ करके उसको दे करके अब। और यदि उसी समय में भड़क जाते दुर्वासा ऋषि जैसा तो काम तो बिगड़ जाता। साधारण ये तो बाहरी और आंतरिक भजन में जैसे नारद जी ने इनको शिक्षा दिया, रामचंद्र जी के भजन के बिना क्रम सोपान में कोई भी ब्रज में नहीं प्रवेश कर सकता है। ब्रज में मैंने द्वारकापुरी में नहीं जा, पथ तो वही है ना। पथ वही है, कल बतलाया एक ही भक्ति है, भक्ति एक ही है, उसके प्रकार अवस्थाओं का नाम अलग अलग हो सकता है, तो है तो एक। रामचंद्र जी में जो शांत दास्य भाव है वही आगे बढ़ करके पूर्ण मित्र सख्य भाव, पूर्ण बात्सल्य भाव आएगा और उसके बाद में मधुर भाव आएगा, अलग नहीं। इसलिए पथ वही है, राम के भक्तों से हमें विरोध नहीं है, जो विरोध करेगा अपराधी होगा, किंतु उसमें संतुष्ट नहीं होना है, ये बात ठीक है। हमको अपना काम निकालना है। यदि राम जी की कृपा से द्वारका में हम अच्छी तरह से बिना किसी झंझट के वहां पर पहुंच जाए तो क्यों नहीं राम की वो कृपा ले ले। गंडका ऋषि लोग और भी कोटि कोटि वर्ष तपस्या करते, किंतु वो चीज नहीं होती जो रामचंद्र जी ने कृपा कर दिया, कह दिया अच्छा अगले जन्म में तुम लोग गोपी होकर के आना और हमको सकल कृपा। बस देखो एक मिनट में काम करना, जो लाखों जन्मों की तपस्या से आराधना से काम नहीं होता, क्योंकि प्रभु तत्वता तो एक ही है। जो काम मान लिया के यहाँ के वैष्णव लोगों का हम संग करते हैं और उससे हमारी भक्ति हो सकती है, तो शंकर जी के संग से नहीं होगा है? शंकर जी के संग से तो न भक्ति नहीं होगी। वो तो इस विषय के रसिक वैष्णव है, वैष्णव यथा संपूर्ण है, कृष्ण तत्व को खूब निकट से जानते हैं, इसीलिए हम शंकर की मरने पर भी भजन नहीं करेंगे। यह बात गलत है। शंकर की कृपा से ही वैष्णव की कृपा होती है, कल बतला। और वैसे रामचंद्र जी की कृपा से वो द्वारका इत्यादि में प्रवेश होता है, कृष्ण की सेवा में, इन तत्वों को बतला। इसलिए एकांतिकता की वहां पर हानि नहीं है। यदि कृष्ण की प्राप्ति के लिए रुक्मिणी जी उमा की गौरी की पूजा करने के लिए द्वारका के बाहर में जाती हैं मंदिर में, तो ये रुक्मिणी की एकांतिकता नष्ट हुई कि नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? अरे वो तो कृष्ण के लिए गई है ना रुक्मिणी जी, वो शंकर के लिए या किसी दूसरे देवता के लिए या पार्वती जी के लिए ही या गौरी के लिए नहीं गई है। गौरी के पास वो गई है किसके लिए? कृष्ण हमको पति के रूप में मिले। ये कात्यायनी की लोगों ने पूजा की, गोपियों ने, नंदसुत हमारे पति भी, तो उनके लिए एकांतिकता नष्ट हो गई। अरे वो कृष्ण के लिए किया। यदि किसी की भी संग करने से और हमको राधा कृष्ण का प्रेम मिल जाए तो एकांतिकता इसमें नष्ट नहीं होती। गोप कुमार जी पहले सोच रहे थे कि हम राम के पास में कैसे जाए, अयोध्या कैसे जाए, ये नहीं, एकांतिकता तुम्हारी नष्ट नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बन चुका है कि हमको राधा कृष्ण हमको मिले, हमारा आराध्य मदन गोपाल जी हमारे आराध्य। इसलिए किसी से हम सहायता ले लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। विशेष तौर पर उनको आपत्ति थी जय सीताराम अथवा सीतापते हनुमत प्रिय लखनाग्रज ये सब कहने में, क्योंकि तो अभी तक तो वो कह रहे थे श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद इत्यादि, और यहाँ अब वो कैसे बदल दें? यदि किसी चीज के बदलने से भी हमारे स्थिति प्रति जल्दी से हो जाती है तो ऊपर से उस चीज को लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसीलिए वो अन्नाभिलाषिता सुन्नम श्लोक में बतलाया है कि लोक संग्रह के लिए वो श्राद्ध भक्ति का विरोधी होने पर भी वैष्णव साध कर सकते हैं, जरूरी नहीं है किंतु लोक संग्रह के लिए कर सकते हैं। इसी तरह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम यदि कहीं ऊपर मन से भीतर मन से नहीं कृष्ण के प्रति निष्ठा रखते हुए भी हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें कोई वो तत्काल जाने के लिए तैयार हो गए द्वारकापुरी में। उन्होंने कहा जी ऐसे मत जाओ, यहां से सीताराम करते हुए और ये नाम कीर्तन करते हुए जाओ। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी सी उनकी आज्ञा ले लूं नारायण की। उन्होंने कहा नारायण से आज्ञा लेने की क्या जरूरत, उन्होंने ही तो मुझे भेजा तेरे पास, उन्होंने ही भेजा कि जाकर के कह दो कि हमारा एक घर से दूसरे घर में जाना है, इसके लिए आदेश करने की कोई जरूरत नहीं, ये प्रकोष्ठ है वैकुंठ का वो दूसरा, इसलिए जरूरत नहीं। कभी कहा जैसे जब निकट हूं तो उनको एक बार प्रणाम कर लेने में दोष क्या है? तो उन्होंने कहा जी नहीं दोष है, तुम जा नहीं सकेगा, क्यों नहीं जा सकेगा? जब उनकी मुस्कुराहट देखेगा, कृपा देखेगा, उनका दर्शन करेगा तो तुम भूल जाएगा जाना, और वो चाहते हैं कि तुम यहाँ पर सुखी नहीं रहेगा इसलिए तुम भूल जाना, इसलिए वो प्रभु नहीं है, प्रभु कहीं चले गए हैं, यहाँ है नहीं। तो मैं थोड़ी सी प्रतीक्षा करूँ तो प्रतीक्षा करने में भी काजने कितना समय लग जाएगा अगर कोई ठीक है, इसलिए प्रतीक्षा करना भी ठीक है। कभी प्रतीक्षा करेंगे तब उन्होंने कहा, नहीं उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं रहूंगा तो वो जा नहीं सकता, इसलिए मेरे दर्शन से उसमें जाने में बाधा आ जाएगी, विचार बदल जाएगा और पीछे हाय हाय करेगा, उत्कंठा से मरेगा। कल जो हमने कहा था कि भजन राज्य में उत्कंठा की सबसे अधिक अवस्था आवश्यकता है, जिसको भजन में कोई भी उत्कंठा नहीं और भजनीय के लिए कोई उत्कंठा नहीं, कम मिलेंगे कम मिलेंगे, यदि ऐसी उत्कंठा नहीं और भजन में उत्कंठा नहीं, उत्कंठा भजन में उत्कंठा कैसी है हमारा दिन भर परिश्रम किया किंतु नाम नहीं, कुछ नाम थोड़ा सा किया किंतु चित्त नहीं लगा, थोड़ा सा चित्त भी लगा किंतु आंखों में बरस आंसू, हृदय द्रवित नहीं, नयन गलदास उठारे बदन गदगद रूप है, ये सब आया नहीं हमारे हृदय। हमारा जैसा पापिष्ट, हमारा जैसा दुर्भागा कोई जन्म नहीं, सब कुछ छोड़ा इसी के लिए, जो उत्कंठा है जितने प्रकार के सुख थे घर बार सब छोड़ दिया इसी के लिए, दिन रात इसके लिए चिंता करता हूं किंतु काम में कुछ नहीं होगा, सब कुछ इसलिए छोड़ा ये मन हमारी और विषयों से हट करके कृष्ण के चरणों में लगे, किंतु भजन करते हैं तो वही सब चीजें आती हैं, चित्त निमित्त नहीं होता, उत्कंठा नाम की कोई उत्कंठा कहते हैं किसको, उत्कंठा माने जब रहा नहीं है, जैसे भोजन के लिए उत्कंठा होती है, जहां ठाकुर जी की आरती हो गई और पाठ चल रहा हो तो कुछ बच्चे जाकर के जोर से घंटा बजाते हैं, इसलिए बजाते हैं उत्कंठा लगी है, उस समय में पाठ भी नहीं सुना, कोई चीज अच्छा नहीं लगता, अब कब प्रसाद मिले, अब कब प्रसाद मिले, किंतु हम लोगों को उतनी भी उत्कंठा भगवत भक्ति के लिए न तो भजनीय के प्रति है न भजन के लिए, और ये उत्कंठा की बात किसको होगी किसको, शांति अव्यक्त कालपन विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा, यहां पर है यह समुत्कंठा की बात कब कही गई, श्रद्धा के समय में, जब श्रद्धा होगी तब है, श्रद्धा में नहीं उत्कंठा है, वहां पर तो सब अनर्थ भरे पड़े हैं, अभी तो निश्चिता भक्ति भी नहीं है, अभी अनिश्चिता पूर्ण अनिश्चिता हमारी, अभी भक्ति अभी पूर्ण अनिश्चिता, तुम लोग की अभी निश्चिता में आ रहे तो कैसे हो, तो श्रद्धा में नहीं होगी, निष्ठा में भी नहीं, निष्ठा में भी होगी उत्कंठा, मन कर रहा है निष्ठा तो हो गई किसी चीज नहीं आती, तो रुचि में होगी, धीरे धीरे कुछ कुछ आ रही है, आसक्ति में कुछ कुछ रहेगी, उत्कंठा कुछ कुछ आएगी आसक्ति के समय, किंतु समुत्कंठा कब आएगी, समुत्कंठा मैंने सम्यक रूपे में उत्कंठित, अब उसे रहा नहीं जाएगा, उत्कंठा होगी तो भावावस्था में वो भी अभी धुमाई, उत्कंठा कैसी रहेगी धुमाई, और जब प्रेम होगा तब क्या होगा, अभी शुद्धित तो नहीं हुआ उत्कंठा, हाँ प्रेम में भी उत्कंठा भी धुमाई, तो इसके बाद में ज्वलित हुई है, धुआं नहीं है, जल रही है किंतु प्रज्वलित नहीं है। ये राग अनुराग में होगा और सुदीप्त से भी दीप्ति सबसे बढ़कर और जो दीप्त उत्कंठा है, समुत्कंठा है, जिससे कि एक फलक का समय भी कृष्ण के लिए उत्कंठित होकर के रहा नहीं जाता। वो श्रीमद् भागवत के उस श्लोक में गोपीनां गोपीनां परमानंद खूब प्रीति हुई जब कृष्ण मिले। और जब चले जा रहे हैं गोष्ठ में, एक चुगाई कम निवेशन चक्षुषा प्राप्त अभी एक है वो एक मुहूर्त का समय यदि कृष्ण गोष्ठ चले जाते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। और कृष्ण लौट करके जब आते हैं तो कोटि कोटि युग एक क्षण में विस्तारित हो जाता है। इसका नाम है तो वो तो है प्रेमावस्था में उसकी अंतिम स्थिति है, किंतु साधन के समय में साधन भी तो उत्कंठा होनी चाहिए और भजनी में कुछ कुछ होगी। जिसके पास में उत्कंठा नहीं है ये बतलाओ कहां गए हैं, अभी प्रेम की अवस्था को पार कर चुके हैं, अनर्थ तो उनका पहले ही चल गया ब्रह्मांड में, सदाशिव लोक में पहुंचे, वहां से भी ऊपर चले गए, वैकुंठ लोक में पहुंच गए हैं। वैकुंठ लोक में प्रेम है, अभी प्रेम के प्राप्ति होने पर भी उत्कंठा लगी है वहां पर अपने गोपाल देव से मिलने के लिए। तब हम लोगों के लिए उत्कंठा कितनी जरूरी है। हाँ, उत्कंठा थी रघुनाथ दास गोस्वामी, उत्कंठा थी रूप गोस्वामी, उत्कंठा थी सनातन गोस्वामी। कैसी उत्कंठा? रघुनाथ दास गोस्वामी की उत्कंठा कैसी? उनको छोड़ दो, मीराबाई की ही उत्कंठा को देख लो, तुलसीदास जी की उत्कंठा, सूरदास की उत्कंठा, हम लोगों में और सब गोस्वामी लोगों की उत्कंठा। प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो सब न भाषा न भाव हम लोग समझ सकते हैं, हृदय में पर न बड़ा भारी कठिन, वही कर सकता है जिसको कुछ न कुछ अनुभूति है उसकी उत्कंठा। इसलिए भाई उत्कंठा जिसमें नहीं है वो अभी तटस्थ है, और भक्ति तटस्थ अवस्था की कोई भी नहीं। जो भक्ति में तटस्थ रहेगा, मिल गए और नहीं आए तो बक की माला, बक फूल की माला को भेजे खाबो, उसमें पकौड़ी बना लेंगे खा लेंगे, आ गए तो ठीक है, और नहीं तो बक फूल एक होता है, देयर इज अ फ्लावर नेम बक, इफ कृष्ण विल कम आई विल मेक ए गार्डन, नमन उनको नमस्कार, कृपा से नहीं होगा। एक बकरी का बच्चा भूखा गाय के स्तन में जाकर के पीने लग जाए तो गाय पिनाएगी कि लात मारेगी, वो कहां निकल जाएगा, वो उसका बछड़ा होना चाहिए अपना। ऐसे ही सबको जो कोई आएगा तो वो लात चढ़ाएगी। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। हाँ भाई, तो ये समझ रखो, कृपा ऐसे मांगने से ही कृपा दे दो। गाय के यहां बकरी का बच्चा जाकर के कहे जैसे मैया हमको दूध दे दे तो नहीं दे। स्नेह के साथ में बछड़ा पूंछ हिलाता हुआ और मैया के स्तन में जाकर के पहुंच जाता है, वो उसको चाटने लगती है और अपने आप हृदय द्रवित होता जाता है, दूध एकदम अपने आप निकलता है। जो भक्ति से भरा पड़ा है, सेवा भावना जिनमें है, वो क्या है? गीता का श्लोक, तद्विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्न, नमन माने प्रणिपाते, परिप्रश्न परिप्रश्न किया, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। इन्होंने सेवा क्या किया? सेवा कुछ किया गुरु जी का? उपदृष्टि से मालूम होता है कि न पंखे झलाए, न पैर दया, न और कोई रसोई बनाया, न भोजन करा। सेवा किसको कहते हैं? प्रतिविधान का नाम। वो ऐसे प्रश्न किए जिसे उनका चित्त प्रसन्न हो गया, और इससे बढ़कर के उनको प्रसन्न करने का और कोई तरीका नहीं, अब ऐसी कोई सेवा नहीं, इस सेवा के द्वारा प्रसन्न। यह शुद्ध गुरु का। और जो दूसरा भी चाहते हैं तो वो भी शुद्ध गुरु ही है, इसलिए यहां पर उनको आशीर्वादम आदाय, आदाय मैंने जोर जबरदस्ती करके ले लिया ऐसा नहीं। उन्होंने जैसे कि कृष्ण ने कहा, ज्ञानम यद विज्ञान समन्वितम साराष्टम तदा अंगश्च।